रणे जित्वा दैत्यानापहृत शिरस्त्रैः कवचभिः निवृत्तैश्चण्डांश त्रिपुरहर निर्माल्य विमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशिविशदकर्पूरशकलाः विलीयन्ते मातस्तव वदन ताम्बूलकबलाः जीत युद्ध में दैत्य गणों को उनके कवच मुकुट को छीन आकर शंभु प्रसाद विमुख जो रहे जान चंडांश अधीन वे ही गुह हरिन्द्र चंद्र सम सच खंड कर्पूर समेत मातः तव तांबूल कणों को करते हैं स्वीकृत समवे।
हे माँ, दैत्यों को रण में जीत कर अपहृत शिरस्त्र और कवचों को उतार कर शिवजी के निर्माल्य से विमुख जो चंड का भाग होता है स्कंद इंद्र और उपेंद्र तीनों तेरे मुख के पान के ग्रास को जिसमें चंद्रमा जैसे स्वच्छ कपूर के टुकड़े पड़े हैं ग्रहण करते हैं। सौंदर्य लहरी के इस 65वें श्लोक में भगवत पाद शंकर ने इस दृश्य की तुलना की है एक माँ के अपने बच्चों के प्रति स्नेह के साथ। जैसे माँ अपने छोटे छोटे बालकों को अपने मुख से निकाल कर बड़े प्रेम से आधे चबे पान के टुकड़े खिलाया करती है, वैसे ही भगवती स्कंद इंद्र और उपेंद्र को, उपेंद्र भगवान विष्णु के नामों में से एक नाम है उनका, तो फिर इन तीनों बालकों को दैत्यों पर जय प्राप्त करने पर प्रसन्न होकर पुरस्कार स्वरूप वो अपने मुख से निकाल कर तांबूल के पान के टुकड़े खिलाती है। चंड जो है शंकर के एक गण का नाम है। उनका स्थान नंदी के दक्षिण हाथ की ओर उसके और जलहरी के बीच में होता है। तो शंकर का निर्माल्य चंड का ही भाग होता है और उसे दूसरा कोई ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए चंड के पास खड़े होकर शंकर की पूजा नहीं की जाती, वह सब निष्फल होती है। स्कंद इंद्र और उपेंद्र तीनों जब दैत्यों को हराकर शंकर के पास गए और वहां जब उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिल सका, क्योंकि जो भी निर्माल्य होता है, निर्माल्य अर्थात देवता की प्रतिमा पर चढ़ाया गया कुछ भी पदार्थ, फल फूल इत्यादि, और शिव का जो भी निर्माल्य होता है उसका अधिकारी तो चंड होता है और किसी और को वो निर्माल्य प्राप्त नहीं हो सकता, इसीलिए फिर वो भगवती के पास गए और माँ का सबसे ऊंचा पुरस्कार उसका वात्सल्य प्रेम प्रकट करने में ही होता है, और इसी प्रेम में छिपा होता है विश्व भर का, जीवन भर का, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान। सर्वोपरि है माँ भगवती की कृपा, माँ प्रकृति की, माँ पराशक्ति की कृपा अपनी संतति के ऊपर, अपनी रचना के ऊपर। ओ डिवाइन मदर, ओ माँ पराशक्ति, स्कंद इंद्र विष्णु आफ्टर विनिंग देयर वॉर अगेंस्ट डेमन्स कम टू यू विद देयर हेड गियर्स रिमूव्ड but still wearing armors on their chests, ignoring the remains of food of Shiva, which is meant only for Chandakeshwara. They directly go to you to have a portion of the betel leaves mixed with pure edible camphor in your mouth. This 65th verse of Saundarya Lehri re-emphasizes the supremacy of Parashakti. स्कंद और कार्तिकेय is said to be a son of Shiva and Parvati. He, along with Indra and Vishnu, is known for annihilating demons, who are repeated offenders, sinners, and cause imbalance in the world of dharma, and are unwilling to correct themselves. They need to be annihilated in order to maintain dharma in the world. So Skanda, Indra and Vishnu, after annihilating these demons, as directed by her, report to her straight from the battlefield with their protective coverings on. They do not have time to remove them even, as they have to report to her immediately. But when they stand before her, they remove their headgears as a mark of respect. There is a reference of Chandakeshwara in this verse, who is seen in Shiva temples. He is a bodyguard of Shiva, and there's a story about this. When Chandakeshwara was very young, he used to be an ardent devotee of Shiva. And when his father prevented him from worshipping Shiva, he killed his father. And at this time, at the plea of his mother, Shiva resurrected his father and took Chandakeshwara with him and appointed him as his guard. Chandakeshwara only eats the leftovers of Shiva, and it is exclusively meant for him. So Skanda, Indra and Vishnu, though they noticed this leftover, but were not inclined to take it. Instead, they went directly to Parashakti, not only report to her, but also waiting for the leftovers of her half-chewed tambula in her mouth, along with Karpur Vitika. It is said that these leftovers are capable of giving immense knowledge, all the knowledge that is there in the universe, of creation, of sustenance, and of recurrence of life cycles, yuga after yuga. अब नौ बार इस श्लोक की पुनः आवृत्ति करते हैं और आज का जप संपन्न करते हैं।
रणे जित्वा दैत्यानापहृत शिरस्त्रैः कवचभिः निवृत्तैश्चण्डांश त्रिपुरहर निर्माल्य विमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशिविशदकर्पूरशकलाः विलीयन्ते मातस्तव वदन ताम्बूलकबलाः रणे जित्वा दैत्यानपहृत शिरस्त्रैः कवचभिः निवृत्तैश्चण्डांश त्रिपुरहर निर्माल्य विमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशिविशदकर्पूरशकलाः विलीयन्ते मातस्तव वदन ताम्बूलकबलाः रणे जित्वा दैत्यानपहृत शिरस्त्रैः कवचभिः निवृत्तैश्चण्डांश त्रिपुरहर निर्माल्य विमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशिविशदकर्पूरशकलाः विलीयन्ते मातस्तव वदन ताम्बूलकबलाः रणे जित्वा दैत्यानपहृत शिरस्त्रैः कवचभिः निवृत्तैश्चण्डांश त्रिपुर हर निर्माल्य विमुख विशाखेन्द्रोपेन्द्र शशि विशद कर्पूर शकला विलीयन्ते मातस्तव वदन तांबूल कबला रणे जित्वा दैत्यानपहृत शिरस्त्रैः कवचभिः निवृत्तैश्चण्डांश त्रिपुरहर निर्माल्य विमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशि विशद कर्पूर शकला विलीयन्ते मातस्तव वदन तांबूल कबला रणे जित्वा दैत्यानपहृत शिरस्त्रैः कवचभिः निवृत्तैश्चण्डांश त्रिपुरहर निर्माल्य विमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशि विशद कर्पूर शकलाः विलीयन्ते मातस्तव वदन तांबूल कबला रणे जित्वा दैत्यानपहृत शिरस्त्रैः कवचभिः निवृत्तैश्चण्डांश त्रिपुरहर निर्माल्य विमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशि विशद कर्पूर शकलाः विलीयन्ते मातस्तव वदन तांबूल कबलाः रणे जित्वा दैत्यानपहृत शिरस्त्रैः कवचभिः निवृत्तैश्चण्डांश त्रिपुर हर निर्माल्य विमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशि विशद कर्पूर शकलाः विलीयन्ते मातस्तव वदन तांबूल कबलाः रणे जित्वा दैत्यानपहृत शिरस्त्रैः कवचभिः निवृत्तैश्चण्डांश त्रिपुरहर निर्माल्य विमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशि विशद कर्पूर शकला विलीयन्ते मातस्तव वदन तांबूल कबला ॐ उमा महेश्वराय नमः ॐ गौरये पार्वत्यै शक्तिः।